एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि भाई जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मतलब मरीजों को एक खास तरह से ही क्यों देखते हैं। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था?
बिल्कुल, ये सवाल बहुत ज़रूरी है और इसी की जड़ों तक ले जाती है मिशेल फुको की बहुत ही अहम प्रभावशाली किताब द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। असल में इसका फ्रेंच नाम है नेसों द लकनीक।
हाँ, और ये किताब सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री का लेखा जोखा नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात करती है।
सही कहा। फुको हमें बताते हैं कि जिससे हम आज मॉडर्न मेडिसिन या आधुनिक चिकित्सा कहते हैं ना, वो कोई बस धीरे धीरे हुआ सुधार या तरक्की नहीं है,
नहीं,
बल्कि ये 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में सोचने और खासकर देखने के तरीके में आया एक बहुत बड़ा, मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव था। बिल्कुल, एक पूरा शिफ्ट। और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है ना, क्योंकि ये हमें डॉक्टर मरीज के रिश्ते की बुनियाद तक ले जाता है।
हाँ, ये समझाती है कि डॉक्टरों का अधिकार कैसे बना, हमारे अपने शरीर को देखने का नजरिया कैसे बदला, और वो जो खास मेडिकल गेज है, वो चिकित्सकीय नजर, वो कैसे पैदा हुई।
हाँ, वो नजर जो सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि एक तरह की सीखी हुई, प्रशिक्षित, भेदने वाली दृष्टि है। इसको समझना आज भी मुझे लगता है हमारे हेल्थ एक्सपीरियंस को समझने में मदद करता है।
बिल्कुल, तो चलें इस दिलचस्प सफर पर।
हाँ, लेकिन पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लें। मिशेल फुको, नाम तो बहुत सुना होगा। 1926 से 1984 तक फ्रांस के बहुत ही माने हुए विचारक, दार्शनिक।
जी, पर जैसे आपने कहा, वो कोई सीधे साधे इतिहासकार नहीं थे, उनका अंदाज बिल्कुल अलग था।
हाँ, उन्हें पारंपरिक इतिहासकार कहना शायद ठीक नहीं होगा। कुछ लोग उन्हें ज्ञान का पुरातत्ववेत्ता कहते हैं।
ज्ञान का पुरातत्ववेत्ता, ये अच्छा फ्रेज है। मतलब जैसे कोई जमीन खोदकर पुरानी सभ्यताएं निकालता है,
हाँ,
वैसे ही फुको विचारों की परतें खोदते थे। वो ये देखते थे कि किसी जमाने में लोग सोचते कैसे थे, कौन से अदृश्य नियम थे, कौन सी संरचनाएं थीं जिन्हें वो एपिस्टमे कहते थे, जो उनकी सोच को एक ढांचा देती थीं।
और उनकी ये बात बहुत अनोखी थी कि पागलपन या समझदारी जैसी चीज़ें भी हमेशा से एक जैसी नहीं थी। वो मानते थे कि ये चीज़ें भी इतिहास में, समाज में गढ़ी गई हैं। उनकी एक और मशहूर किताब है मैडनेस इन सिविलाइजेशन, उसमें उन्होंने यही दिखाया था।
बिल्कुल, और यही अनोखा नज़रिया द बर्थ ऑफ द क्लिनिक को इतनी खास किताब बनाता है। फुको की दिलचस्पी ये लिस्ट बनाने में नहीं थी कि देखो कितनी महान मेडिकल खोजें हुईं या कौन कौन महान डॉक्टर थे।
नहीं, वो उस जड़ तक पहुंचना चाहते थे। वो समझना चाहते थे कि भाषा में, सोच में, प्रैक्टिस में, मतलब उस पूरे सिस्टम में जिसे वो डिस्कोर्स कहते हैं, क्या बुनियादी बदलाव आया जिसने हमारी आज की मेडिकल दुनिया को मुमकिन बनाया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुराने मेडिकल टेक्स्ट पढ़े, अस्पतालों के रिकॉर्ड देखे, सरकारी आदेश पढ़े।
हाँ, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए नहीं, वो इन दस्तावेजों में उन छिपे हुए नियमों को ढूंढ रहे थे जो उस नई मेडिकल नज़र को कंट्रोल कर रहे थे। फुको के लिए असली क्रांति मशीनों या दवाइयों में उतनी नहीं थी
जितनी सोचने के तरीके में थी।
एग्जैक्टली, जैसे खेल के नियम ही बदल दिए गए हों।
तो अब आते हैं सीधे किताब पर। ये किताब आखिर है किस बारे में, संक्षिप्त में बताएं तो?
ये हमें ले जाती है पश्चिमी चिकित्सा के इतिहास में, खासकर फ्रांस में। समय है लगभग 1780 से 1820 के बीच का। फुको का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये कि इस दौर में सिर्फ पुराने ज्ञान को सुधारा नहीं गया, बल्कि बीमारी को देखने का, उसके बारे में सोचने का और उस पर एक्शन लेने का एक बिल्कुल नया तरीका पैदा हुआ, एकदम नया।
और ये नया तरीका, जिसे फुको एनाटोमो क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं, ये कहाँ पनपा? इसकी जगह क्या थी?
हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये पनपा एक खास जगह पर,
जी,
क्लिनिक यानी टीचिंग हॉस्पिटल, शिक्षण अस्पताल। और फुको के हिसाब से ये क्लिनिक सिर्फ बीमारों के इलाज की जगह नहीं थी।
अच्छा,
तो और क्या थी? ये ज्ञान पैदा करने की फैक्ट्री थी, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने की जगह थी, और सबसे बढ़कर ये वो जगह थी जिसने डॉक्टर, मरीज और बीमारी के रिश्ते को ही नए सिरे से गढ़ दिया। एक शक्तिशाली औजार बन गया ये क्लिनिक।
सोचिए जरा, इससे पहले क्या था? फुको बताते हैं कि 18वीं सदी में, मतलब इस बदलाव से पहले, मेडिसिन का काम मुख्य रूप से क्या था? लक्षणों के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण करना, क्लासिफाई करना।
हाँ, जैसे कोई बॉटनिस्ट पेड़ पौधों की अलग अलग किस्में बताता है ना, वैसे ही डॉक्टर बीमारियों को लक्षणों के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में बांटते थे। इसे नोजोलॉजी कहते थे।
और बीमारी को कैसे देखा जाता था?
बीमारी एक तरह की बाहरी चीज मानी जाती थी जो शरीर पर हमला करती है। शरीर वो तो बस एक स्टेज था जहां बीमारी के लक्षण दिखते थे। असली चीज बीमारी का वो वर्गीकरण था। डॉक्टर की अपनी आंख देखी चीजों पर आ गया। डॉक्टर शरीर पर दिखने वाले संकेतों, साइंस को पढ़ने लगे।
संकेत यानी?
संकेत यानी वो चीजें जिन्हें डॉक्टर खुद देख सकता था, सुन सकता था या छूकर महसूस कर सकता था, जैसे बुखार, सांस की आवाज या पेट में कोई गांठ।
और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट।
बिल्कुल, व्यवस्थित शव परीक्षा, ऑटोप्सी। इसने तो कमाली कर दिया। इसने डॉक्टरों को शरीर के अंदर झांकने की ताकत दे दी।
और अंदर क्या देखा?
बीमारी का असली भौतिक निशान, वो घाव या लीजन। अब बीमारी कोई बाहरी चीज नहीं रही, वो शरीर के अंदर स्थित एक ठोस, पकड़ी जा सकने वाली चीज बन गई। और डॉक्टर की नजर वो मानो सच को भेदने वाली परम सत्य जानने वाली नजर बन गई।
वाह, चलिए इस बदलाव की कहानी को थोड़ा और परत दर परत खोलते हैं, जैसे फूको ने किया है। तो शुरुआत होती है 18वीं सदी की उस वर्गीकरण वाली चिकित्सा से। उस जमाने में डॉक्टर का मुख्य काम क्या था, फिर से बताएं जरा।
हाँ, तो उस दौर में डॉक्टर का मुख्य काम था बीमारी की सही प्रजाति पहचानना। मान लीजिए जैसे कोई लाइब्रेरियन किताबों को सही विषय के शेल्फ पर रखता है, वैसे ही डॉक्टर लक्षणों के गुच्छे को देखकर बीमारी को उसकी सही कैटेगरी में फिट करता था।
मतलब मरीज की अपनी फीलिंग, उसकी कहानी, वो उतनी जरूरी नहीं थी?
उतनी नहीं, ज्यादा जरूरी ये जानना था कि भाई ये बुखार किस टाइप का है, या ये खांसी फला बीमारी की लिस्ट में आती है या ढिमाकी की लिस्ट में। बीमारी ज्यादातर शरीर से बाहर की एक अमूर्त इकाई जैसी थी।
ये समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए?
ये इसलिए जरूरी है क्योंकि फूको जोर देकर कहते हैं कि ये पुराना सिस्टम भी अपने आप में लॉजिकल और पूरा था। ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर बेवकूफ थे और बाद वाले एकदम से स्मार्ट हो गए।
अच्छा।
नहीं, बस सोचने का पूरा ढांचा, वो फ्रेमवर्क ही अलग था। इसीलिए जब बदलाव आया तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत सुधार नहीं था, वो नियमों का पूरा खेल बदलना था। फूको इसी को कहते हैं ज्ञान मीमांसीय विच्छेद या एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, मतलब ज्ञान के ढांचे में एक गहरी दरार, या यूं कहे कि एक बड़ा यूटर्न।
तो फिर सवाल उठता है कि इतना बड़ा बदलाव, ये यूटर्न आया कैसे, अचानक से?
यहीं पर समाज और राजनीति की भूमिका आती है। फूको दिखाते हैं कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति जैसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल ने पुरानी व्यवस्थाओं, पुरानी संस्थाओं, पुराने नियमों को हिला कर रख दिया।
हाँ, क्रांति के बाद एक नई सरकार आई, नई जरूरतें पैदा हुई।
बिल्कुल, नई सरकार को स्वस्थ नागरिक चाहिए थे, फिट सैनिक चाहिए थे। लोगों की सेहत अब सिर्फ उनका निजी मसला नहीं रही, वो राज्य की, स्टेट की चिंता बन गई।
और इसी नई जरूरत का असर अस्पतालों पर पड़ा।
हाँ जी, अस्पतालों का पूरा मकसद ही बदल गया। पहले अस्पताल अक्सर गरीबों के लिए एक तरह से आखिरी आसरा होते थे, या जहां लोग बस मरने जाते थे। अब वो वैज्ञानिक जांच पड़ताल और सबसे जरूरी मेडिकल ट्रेनिंग के बड़े सेंटर बन गए।
और यही थे असली क्लिनिक।
एग्जैक्टली। अब सोचिए, एक ही जगह पर कितने सारे मरीज। इससे डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स को बीमारियों को करीब से देखने का, उनकी तुलना करने का, पैटर्न ढूंढने का ऐसा मौका मिला जैसा पहले कभी नहीं था। अभूतपूर्व अवसर था ये।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, है ना?
हाँ, इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि मरीज धीरे धीरे सिर्फ एक बीमार इंसान न रहकर एक केस बन गया, अध्ययन का एक विषय, सीखने का एक जरिया। यहाँ हमें साफ दिखता है कि कैसे संस्थाएं जैसे क्लिनिक और ज्ञान, मेडिकल नॉलेज, एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
और अब आते हैं उस चीज पर जो इस किताब का बिल्कुल केंद्र है, उसका दिल है, मेडिकल गेज, लरोगार, वो खास चिकित्सकी नजर। फूको बहुत बारीकी से समझाते हैं कि ये कैसे बनी।
हाँ, वो बताते हैं कि कैसे डॉक्टरों का ध्यान मरीज की कही हुई बातों से, मतलब उसके व्यक्तिपरक अनुभव से हट गया।
और कहाँ चला गया?
सीधा शरीर पर, शरीर पर दिखने वाले या महसूस होने वाले संकेतों पर, ऑब्जेक्टिव सबूतों पर।
और ये गेज, ये नजर सिर्फ देखना भर नहीं थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रेनिंग से हासिल की गई नजर थी, भेदने वाली। ये ऐसी नज़र है जो सतह के पार जाकर अंदर छिपी बीमारी की असलियत को देखने का दावा करती है। ये नापती है, तुलना करती है, चीजों को एक क्रम में रखती है।
इसने हमारी इंद्रियों के इस्तेमाल को भी बदल दिया होगा।
हाँ, देखना और छूना ज्यादा जरूरी हो गए, जैसे स्टेथोस्कोप से सुनना या पेट दबाकर देखना, जबकि मरीज क्या कह रहा है उसकी अपनी कहानी वो थोड़ी पीछे चली गई।
यहीं पर वो लक्षण और संकेत का फर्क आता है जो आपने पहले बताया था।
जी, लक्षण सिम्टम वो है जो मरीज महसूस करता है और बताता है, जैसे मेरे पेट में बहुत दर्द है, ये उसका अपना अनुभव है।
और संकेत साइन?
संकेत वो है जिसे डॉक्टर खुद देख या माप सकता है, जैसे थर्मोमीटर पर बुखार, स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन की खास आवाज या चमड़ी पर कोई चकहता। क्लिनिक ने डॉक्टरों को सिखाया कि संकेतों पर ज्यादा भरोसा करो क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हैं।
और फिर इस नजर को अल्टीमेट पावर, असली ताकत कहां से मिली?
वो मिली शव परीक्षा से, ऑटोप्सी से। फुको इसे कहते हैं शव की संप्रभुता, यानी मुर्दा शरीर का राज।
अच्छा, शव की संप्रभुता।
हाँ, ज़ेवियर बिशेट जैसे उस जमाने के डॉक्टरों ने ये दिखाया कि शरीर को खोलकर वे बीमारी के असली भौतिक कारण, वो जो घाव या लीजन है, उसको सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं
और फिर उसे जिंदा मरीज में देखे गए संकेतों से जोड़ सकते थे।
बिल्कुल, ये कनेक्शन बनाना ही क्रांति थी।
बिशेट का वो मशहूर वाक्य है ना जिसे फुको कोट करते हैं?
हाँ, वो इस पूरी क्रांति का सार है। बिशेट ने कहा, कुछ लाशें खोलो, तुम तुरंत उस अंधेरे को दूर कर दोगे जिसे अकेले अवलोकन दूर नहीं कर सका।
सुनने में थोड़ा विचलित करने वाला लग सकता है, पर मृत्यु से जीवन का ज्ञान मिला।
और आखिर में फोको बताते हैं कि इस नई नजर ने सिर्फ देखने का तरीका ही नहीं बदला।
नहीं, इसने मेडिकल भाषा को भी बदल दिया। एक नया डिस्कोर्स, बातचीत का एक नया तरीका बनाया। अब बीमारी का वर्णन शरीर के ठोस थ्री डायमेंशनल स्पेस के हिसाब से होने लगा।
मतलब
बीमारी अब कोई हवा हवाई चीज नहीं रही, वो शरीर के किसी खास अंग या टिश्यू में होने वाली एक प्रक्रिया बन गई जिसे लोकेट किया जा सकता था, पिन पॉइंट किया जा सकता था।
और इसके साथ ही शरीर क्या बन गया?
शरीर एक तरह की किताब बन गया, एक टेक्स्ट जिसे सिर्फ प्रशिक्षित डॉक्टर ही पढ़ सकता था। मरीज बेचारा मानो अपने ही शरीर की भाषा से अनजान हो गया।
और यहीं पे वो शक्ति और ज्ञान वाला कनेक्शन आता है। एग्जैक्टली, शरीर की सच्चाई को जानने की एक काबिलियत, ये एक्सक्लूसिव क्षमता डॉक्टर को मरीज पर जबरदस्त अधिकार देती है। फुको हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये ज्ञान कभी न्यूट्रल, तटस्थ नहीं होता, यह हमेशा ताकत से, शक्ति से जुड़ा होता है। ये कंट्रोल का भी एक तरीका है।
वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही हिला देता है। तो अगर हमें इस पूरी गहरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें, कुछ टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? इस किताब का निचोड़ क्या है?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज तो है मेडिकल गेज का कॉन्सेप्ट, वो वस्तुनिष्ठ, भेदने वाली, थोड़ी अव्यक्तिक सी नजर।
हाँ, वो नजर जो मरीज को एक इंसान से ज्यादा एक केस या जांच की चीज में बदल देती है। हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा ना, जब डॉक्टर हमारी बात कम सुनते हैं और रिपोर्ट या एक्सरे को ज्यादा घूरते हैं।
बिल्कुल, ये उसी नजर की विरासत है। दूसरी बात, फुको का वो ज्ञानोमीमांसीय विच्छेद का आइडिया,
मतलब कि मेडिकल साइंस सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ी।
हाँ, बल्कि सोचने के तरीके में अचानक एक बड़ा ब्रेक आया, एक बदलाव आया। ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम प्रगति या तरक्की कहते हैं, वो हमेशा स्मूथ, धीरे धीरे नहीं होती, कभी कभी बड़े झटके लगते हैं, पूरी दिशा बदल जाती है।
तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा कि क्लिनिक सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो ज्ञान और ताकत को ऑर्गेनाइज करने की एक तकनीक है, एक सिस्टम है। जैसे स्कूल या दफ्तर का माहौल हमारी सोच को ढालता है, वैसे ही क्लिनिक के माहौल और सिस्टम ने मेडिकल सोच को गढ़ा। संस्थाएं ज्ञान बनाने के लिए जरूरी हैं।
चौथा, शरीर ज्ञान का विषय बन गया, ये भी बड़ा पॉइंट है। पहले बीमारी शरीर में दिखती थी, अब शरीर ही बीमारी की जड़ और उसकी असलियत बन गया। उसे खोला जा सकता है, नापा जा सकता है, उसके अंदर देखा जा सकता है।
हाँ, और आज के फिटनेस ट्रैकर्स, इतने सारे स्कैन्स, जेनेटिक टेस्ट्स, ये सब इसी चीज का एक्सटेंशन है। हमारा शरीर लगातार डेटा में बदलता जा रहा है।
पांचवा, वो थोड़ा चौंकाने वाला विचार, मृत्यु की संप्रभुता।
हाँ, कि जिंदगी बचाने वाली मॉडर्न मेडिसिन ने अपना सबसे पक्का ज्ञान मौत के अध्ययन से हासिल किया। लाशों को चीर कर जिंदगी का सच मौत से पता चला। ये पैराडॉक्स बहुत गहरा है।
और छठा पॉइंट, जो फुको के पूरे काम में एक धागे की तरह चलता है, शक्ति और ज्ञान का अटूट रिश्ता।
बिल्कुल, डॉक्टर का अधिकार, उनकी अथॉरिटी उनके खास तरीके से देखने और जानने की क्षमता से आती है, और ये जानना अपने आप में नियंत्रण का, कंट्रोल का एक रूप है।
ज्ञान कभी ताकत से अलग नहीं होता।
फुको के लिखने का अंदाज भी कमाल का है। कुछ बातें, कुछ जुमले दिमाग में अटक जाते हैं। जैसे वो डॉक्टर के सवाल पूछने के तरीके में आए बदलाव की बात करते हैं। 18वीं सदी में डॉक्टर क्या पूछता था?
तुम्हें क्या तकलीफ है या क्या हुआ है तुम्हें?
हाँ, और 19वीं सदी में क्लिनिक के दौर में ये सवाल क्या बन गया?
दर्द कहाँ है?
ये छोटा सा फर्क कितना कुछ कह जाता है ना। पहला सवाल मरीज के पूरे अनुभव को, उसकी कहानी को जगह देता है,
जबकि दूसरा सवाल सीधा शरीर के एक हिस्से पर फोकस करता है, लोकेशन पर। मरीज की कहानी जैसे पीछे छूट जाती है।
और बिशेट वाला वो कथन तो वाकई बार बार सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लाशें खोलो, तुम तुरंत उस अंधेरे को दूर कर दोगे।
हाँ, ये सीधे सीधे शव परीक्षा को ज्ञान का अल्टीमेट सोर्स बता रहा है, जिंदा शरीर को देखने की सीमाओं को उजागर कर रहा है।
एक और विचार जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा वो ये कि मेडिकल गेज कोई प्यारी नरम सी नजर नहीं है। फूको इसकी तुलना किससे करते हैं?
स्कैल्पल से, छुरी से, कि ये नजर भी स्कैल्पल की तरह चीर फाड़ करके देखती है, चीजों को समझने लायक टुकड़ों में बांटती है, उन्हें क्रम में लगाती है। इसमें एक तरह की विश्लेषणात्मक, थोड़ी आक्रामक शक्ति है।
और आखिर में वो थोड़ा उदास करने वाला विचार कि क्लिनिक के सिस्टम में रोगी अपने बीमारी की दुर्घटना बन जाता है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे इस नए नैदानिक ढांचे में इंसान थोड़ा गौण हो जाता है और बीमारी या उसका शारीरिक कारण मुख्य फोकस बन जाता है। मरीज जैसे सिर्फ उस बीमारी को ढोने वाला एक माध्यम बन जाता है।
अब सबसे बड़ा सवाल, फूको की ये सारी बातें जो लगभग 200 साल पुरानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में है, आज हमारे किस काम की हैं? हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली और सीधी बात तो ये है कि ये हमें डॉक्टर मरीज के रिश्ते में जो पावर डायनामिक्स हैं, जो शक्ति असंतुलन है, उसे समझने में मदद करती है।
हाँ, कई बार हमें लगता है ना कि डॉक्टर साहब हमारी सुन ही नहीं रहे, बस टेस्ट लिख रहे हैं, दवा दे रहे हैं। फूको को पढ़कर समझ आता है कि ये शायद सिर्फ उस एक डॉक्टर की कमी ना हो।
हाँ, बल्कि ये उस गेज की, उस खास नजरिए की ऐतिहासिक विरासत हो सकती है। और ये जानने से शायद हम अपनी बात, अपना अनुभव ज्यादा आत्मविश्वास से, ज्यादा जोर देकर रख पाएं।
दूसरी बात, ये हमें मेडिकल अथॉरिटी पर सवाल उठाने का एक आधार देता है, एक हौसला देता है।
कैसे?
जब हम ये समझते हैं कि मेडिकल सच या मेडिकल ज्ञान हमेशा से ऐसा ही पत्थर की लकीर नहीं था, इसे इतिहास ने, सामाजिक जरूरतों ने गढ़ा है, तो हम शायद अपनी देखभाल में ज्यादा एक्टिव रोल ले सकते हैं।
हाँ, जैसे सेकंड ओपिनियन लेने में कम हिचकिचाना, या अपने शरीर की, अपनी समझ, अपनी इंट्यूशन को भी थोड़ी अहमियत देना।
और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, MRI, CT स्कैन, एंडोस्कोपी, जेनेटिक मैपिंग, ये सब क्या हैं?
ये उसी गेज के नए और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप हैं। ये शरीर को और भी ज्यादा पारदर्शी, और भी ज्यादा पढ़ा जा सकने वाला बना देते हैं।
लेकिन इसमें खतरा भी है।
बिल्कुल, खतरा ये है कि कई बार मशीन की बनाई इमेज मरीज के असल अनुभव पर, उसकी तकलीफ पर हावी हो जाती है। फूको हमें इन तकनीकों के इस्तेमाल और उनके असर पर भी गंभीर रूप से सोचने को कहते हैं।
चौथा पॉइंट, ये हेल्थ की पॉलिटिक्स को भी उजागर करता है।
हाँ, फूको दिखाते हैं कि मेडिकल ज्ञान कभी भी वैक्यूम में पैदा नहीं होता, वो हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों से जुड़ा रहा है, चाहे वो अतीत में स्वस्थ सैनिक तैयार करना हो या आज एक प्रोडक्टिव काम करने लायक आबादी बनाना हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज की हेल्थ पॉलिसीज, जैसे मान लीजिए टीकाकरण अभियान है या लाइफस्टाइल से जुड़े नियम हैं, इन्हें सिर्फ साइंटिफिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
हाँ, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से भी देखना और समझना चाहिए। उनके पीछे की मंशा क्या है, किसके हित सद रहे हैं।
और शायद सबसे जरूरी बात, फूको की आलोचना हमें सेहत के प्रति ज्यादा होलिस्टिक, ज्यादा समग्र नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है।
बिल्कुल, एक ऐसा नजरिया जहां मरीज की कहानी, उसके एहसास, उसके सामाजिक हालात, उसकी जिंदगी के पूरे संदर्भ को भी उतनी ही तवज्जो मिले जितनी की बायोमेडिकल डेटा या स्कैन रिपोर्ट को मिलती है।
यानी सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि बीमार इंसान का इलाज।
सही कहा।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपने शरीर और बीमारी को आज जैसे समझते हैं, वो कोई कुदरती या इकलौता तरीका नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है।
हाँ, इसे इतिहास ने, भाषा ने, संस्थाओं ने, और हाँ, ताकत के रिश्तों ने मिलकर गढ़ा है। मॉडर्न मेडिसिन कोई सीधी साधी लीनियर तरक्की का आखिरी मुकाम नहीं है, बल्कि देखने और जानने का एक खास ऐतिहासिक रूप से बना तरीका है, जिसके अपने जबरदस्त फायदे हैं, लेकिन अपनी सीमाएं और अपने अंधे स्पॉट भी हैं।
मेरे लिए तीन बातें खास तौर पे दिमाग में रह गईं। पहला, ज्ञान खोजा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है, उसका निर्माण होता है।
दूसरा,
पावर और नॉलेज, शक्ति और ज्ञान हमेशा हाथ में हाथ डालकर चलते हैं।
और तीसरा
ये थोड़ा परेशान करने वाला सच कि मॉडर्न मेडिसिन के जन्म के लिए कहीं ना कहीं मरीज की व्यक्तिपरक आवाज को थोड़ा दबाना और शरीर को एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना जरूरी हुआ।
मेरे लिए सबसे हैरत अंगेज या कहें कि चौंकाने वाली बात ये थी कि कैसे मौत का अध्ययन यानी शव परीक्षा जिंदगी को समझने और बचाने वाली मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद बना। ये विरोधाभास सच में बहुत गहरा है।
और मेरे लिए ये कि कैसे वो मेडिकल गेज, वो खास नजर सिर्फ एक देखने का तरीका नहीं बल्कि ताकत का एक ऐसा रूप है जिसने डॉक्टर मरीज के रिश्ते को इतने मौलिक रूप से बदल दिया और हम आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे महसूस करते हैं।
हाँ, फूको हमें उकसाते हैं कि जिसे हम नॉर्मल या प्राकृतिक मानकर चलते हैं उस पर सवाल उठाएं, उसके जड़ों को खंगालें।
और शायद ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या भविष्य में हम देखने के, समझने के और बेहतर और ज्यादा मानवीय तरीके खोज सकते हैं, ऐसे तरीके जो टेक्नोलॉजी की ताकत और इंसानियत के एहसास के बीच एक बेहतर संतुलन ला सके।
ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।